एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ग्रंथ सार में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम अमेरिकी साहित्य के खजाने से एक ऐसा मोती चुनकर लाए हैं जिसकी चमक आप देखिए दशकों बाद भी फीकी नहीं पड़ी है।
हाँ बिल्कुल, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली का कालजयी उपन्यास।
जी, 1960 में पब्लिश हुआ और पुलित्जर प्राइज भी मिला इसे। पर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, है ना?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अमेरिकी समाज, खासकर जो दक्षिणी राज्य थे उस समय, उनके नैतिक ताने बाने पर एक बहुत गहरी अहम टिप्पणी है।
हम बात करेंगे 1930s के दशक की, अलाबामा।
जी, महामंदी का दौर।
और एक छोटा सा काल्पनिक शहर, मेकॉम्ब। हम देखेंगे कि कैसे एक बच्ची की नजरों से ये कहानी खुलती है, नस्लीय अन्याय, साहस, सहानुभूति।
हाँ, बहुत सी पढ़ते हैं इसमें।
तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है,
बिल्कुल,
बल्कि उसके मर्म तक पहुंचना है, समझना है कि ये उपन्यास आज भी क्यों इतना जरूरी है, क्यों पढ़ा जाना चाहिए।
बिल्कुल। कहानी हमें ले चलती है मेकम शहर। हापली खुद इसे कहती हैं एक थका हुआ पुराना शहर।
अच्छा,
जिंदगी की रफ्तार धीमी है, गर्मी के दिन बहुत लंबे लगते हैं, और समाज के जो नियम कायदे हैं वो पत्थर के लकीर जैसे हैं,
हाँ,
बहुत सख्त।
और हम ये सब देख रहे हैं एक 6 साल की बच्ची जीन लुइस फिंच की आंखों से।
हाँ, जिसे सब स्काउट कहते हैं, वो हमारी कथावाचक है।
तो शुरुआत में बच्चों की दुनिया कैसी है? स्काउट, उसका बड़ा भाई जेम,
और उनका एक दोस्त है डिल, जो गर्मियों में आता है। तो इन बच्चों की दुनिया घूमती है उनके एक रहस्यमयी पड़ोसी के इर्द गिर्द, आर्थर रैडली, जिसे सब बू कहते हैं।
बू रैडली, हाँ, वो जो सालों से घर से बाहर नहीं निकला।
जी, और बच्चों के लिए वो किसी भूत या दंत कथा के पात्र जैसा है। उसके बारे में तरह तरह की डरावनी कहानियां वो गढ़ते रहते हैं।
बच्चे हैं, उनकी कल्पनाएं हैं।
बिल्कुल, उनके खेल, उनकी हिम्मत जुटाने की कोशिशें, सब इसी के आसपास है कि किसी तरह बू को एक नज़र देख लें या उसे घर से बाहर निकाल लें।
ये तो हुई बच्चों की अपनी एक अलग दुनिया, लेकिन कहानी के केंद्र में तो फिंच परिवार है।
हाँ बिल्कुल, स्काउट है जो बहुत सवाल पूछती है और एकदम बेबाक बोलती है। उसका भाई जेम, जो अब बड़ा हो रहा है, समझदार बन रहा है, दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा है।
और उनके पिता एटिकस फिंच।
जी, एक विधुर वकील, बहुत शांत स्वभाव के, लेकिन नैतिक रूप से बहुत दृढ़, यही उनकी पहचान है।
परिवार में कैल्पर्निया भी हैं।
हाँ, कैल्पर्निया उनकी अश्वेत रसोईया और देखभाल करने वाली, माँ की तरह हैं, सख्त भी और बहुत स्नेही भी।
एटिकस का किरदार बहुत खास लगता है, शहर में इज्जत है उनकी।
हाँ, सम्मानित सदस्य हैं, लेकिन कहानी में आगे उन्हें एक ऐसी भूमिका निभानी पड़ती है जो उन्हें इसी समाज के खिलाफ खड़ा कर देती है।
अच्छा,
कहते हैं कि हार्पर ली के अपने पिता भी वकील थे और एटिकस का चरित्र काफी हद तक उनसे ही प्रेरित है।
तो बच्चों का वो खेल, बू रैडली का रहस्य, ये सब पीछे छूट जाता है।
हाँ, मतलब वो चलता रहता है बैकग्राउंड में, लेकिन कहानी का जो मुख्य संघर्ष है वो तब सामने आता है जब जज टेलर एटिकस फिंच को एक बहुत मुश्किल केस सौंपते हैं।
कौन सा केस?
टॉम रॉबिन्सन नाम के एक अश्वेत व्यक्ति का बचाव करना।
ओह,
जिस पर एक श्वेत महिला, मायला एवल, ने बलात्कार का झूठा आरोप लगाया है।
और ये बात हो रही है 1930 के दशक के दक्षिणी अमेरिका की।
जी हाँ, नस्लीय तनाव चरम पर था, तो ऐसे में ये केस सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं रहता।
नहीं, ये तो एक सामाजिक विस्फोट जैसा हो गया होगा।
बिल्कुल, एटिकस का ये केस लेना फिंच परिवार को सीधे सीधे शहर के गहरे पूर्वाग्रहों और नफरत के निशाने पर ला देता है।
और यहीं से उपन्यास का वो बड़ा सवाल उठता है।
हाँ, कि क्या न्याय और सहानुभूति समाज में इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी नफरत और अन्याय के सामने टिक पाएंगे?
और यही एटिकस का असली चरित्र उभर कर सामने आता है ना?
जी,
वो जानते हैं कि ये लड़ाई जीतना लगभग नामुमकिन है, फिर भी वो उसे स्वीकार करते हैं।
क्यों?
क्योंकि उनकी अंतरात्मा यही कहती है, उनका नैतिक कर्तव्य है।
इसके बाद शहर का मामूल तो बदल गया होगा फिंच परिवार के लिए।
हाँ बिल्कुल, स्काउट और जेम को स्कूल में सड़क पर ताने सुनने पड़ते हैं, परिवार को खुली दुश्मनी झेलनी पड़ती है।
मुश्किल समय रहा होगा बच्चों के लिए।
बहुत, और इसी दौरान एटिकस अपने बच्चों को साहस का सही मतलब सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सटली।
जैसे वो पागल कुत्ते वाली घटना?
हाँ, वो एक अहम घटना है। शहर में एक पागल कुत्ता आ जाता है, रेबीज वाला, और एटिकस, जिन्हें बच्चे अब तक शायद थोड़ा कमजोर समझते थे।
हाँ, क्योंकि वो दूसरे पिताओं जैसे नहीं थे शायद।
बिल्कुल, वही एटिकस एक ही गोली में उस कुत्ते को मार गिराते हैं। बच्चे चौंक जाते हैं, उन्हें अपने पिता की एक छुपी हुई क्षमता का पता चलता है।
इसका कोई गहरा मतलब भी है शायद। हाँ, कह सकते हैं। ये शायद दिखाता है कि एटिकस में वो सामाजिक पागलपन, यानी जो नस्लवाद का उन्माद है, उसका सामना करने की हिम्मत है। वो शांत दिखते हैं पर अंदर से मजबूत हैं।
साहस का एक और सबक मिसेस ड्यूबोस से मिलता है।
ओ हाँ, मिसेस ड्यूबोस एक बहुत ही, क्या कहें, कटु स्वभाव की बीमार बुजुर्ग महिला
जो एटिकस और बच्चों का अपमान करती रहती हैं।
जी, और जिम एक दिन गुस्से में आकर उनके फूलों की क्यारियां तोड़ देता है। तो सजा के तौर पर एटिकस उसे रोज मिसेस ड्यूबोस के पास जाकर पढ़ने भेजते हैं।
ये तो जिम के लिए बहुत मुश्किल सजा रही होगी।
हाँ, बहुत। वो महिला उसे बहुत भला बुरा कहती थी, लेकिन फिर मिसेस ड्यूबोस की मृत्यु हो जाती है।
अच्छा।
और तब एटिकस बच्चों को बताते हैं कि वो मॉर्फिन की आदी थी और वो मरने से पहले इस लत से छुटकारा पाना चाहती थी। हर रोज जब जिम उन्हें पढ़कर सुनाता था, वो थोड़ी ज्यादा देर तक बिना मॉर्फिन के रहने की कोशिश करती थी।
मतलब वो अपनी लत से लड़ रही थी।
हाँ, वो उनका अपना संघर्ष था।
और एटिकस इसे असली साहस कहते हैं।
वो मशहूर कोटेशन यहीं से है।
जी हाँ,
साहस का मतलब ये नहीं कि आपके हाथ में बंदूक हो। असली साहस तो तब है जब आप कोई काम शुरू करने से पहले ही जानते हैं कि आप हारे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप उसे शुरू करते हैं और अंत तक निभाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
वाह, ये बात तो न सिर्फ मिसेस ड्यूबोस पर लागू होती है।
नहीं, ये एटिकस के टॉम रॉबिन्सन केस लड़ने के फैसले का भी सार है। नैतिक साहस, सही के लिए खड़े होना, जानते हुए भी कि नतीजा शायद आपके खिलाफ ही होगा।
और बू रैडली का क्या, वो रहस्य बना हुआ है?
हाँ, बू रैडली का रहस्य कहानी में एक सदन गॉथिक माहौल बनाए रखता है, कुछ अनकहा, कुछ डरावना सा, जो सतह के नीचे है।
तो फिर मुकदमे का दिन नजदीक आता है, तनाव बढ़ रहा होगा शहर में।
हाँ, बहुत ज्यादा। और मुकदमे से ठीक पहले एक रात शहर के बाहर से कुछ श्वेत किसानों की भीड़ आती है।
किस लिए?
उनका इरादा होता है टॉम रॉबिन्सन को जेल से निकालकर मार डालने का।
लिंचिंग।
हे भगवान, एटिकस को शायद अंदाजा था। वो अकेले निहत्थे जेल के दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं किताब पढ़ते हुए, उस भीड़ को रोकने के लिए।
अकेले?
अकेले।
स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है।
वो लोग एटिकस को हटने को कहते हैं।
तभी बच्चे आ जाते हैं।
हाँ, स्काउट जेम और डिल वो चुपके से घर से निकलकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें पता नहीं था कि क्या हो रहा है।
और फिर स्काउट कुछ करती है।
हाँ, स्काउट भीड़ में एक किसान को पहचान लेती है, मिस्टर कनिंघम। वो उसके बेटे को स्कूल से जानती है।
अच्छा।
तो वो बड़ी मासूमियत से आगे बढ़कर मिस्टर कनिंघम से उनके बेटे वॉल्टर के बारे में बातें करने लगती है। हेलो मिस्टर कनिंघम, वॉल्टर कैसा है? इस तरह से।
उस तनाव भरे माहौल में एक बच्ची की ऐसी बातें।
हाँ, और उसका असर जादू जैसा होता है। वो सीधी साधी मानवीय बातचीत उस नफरत भरी भीड़ को जैसे तोड़ देती है।
लोग शर्मिंदा हो जाते हैं।
बिल्कुल, उन्हें शायद अपनी इंसानियत याद आ जाती है। वो चुपचाप वापस चले जाते हैं।
तो स्काउट ने अनजाने में ही टॉम रॉबिन्सन और अपने पिता दोनों को बचा लिया।
हाँ, ये घटना दिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत नफरत या हिंसा में नहीं बल्कि मासूमियत और इंसानियत में होती है।
फिर आता है मुकदमा, उपन्यास का शायद सबसे अहम हिस्सा।
जी, ये कहानी का नाटकीय शिखर है। कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ है, श्वेत लोग नीचे बैठे हैं, अश्वेत लोग ऊपर बैल्कनी में।
एटिकस कैसे बचाव करते हैं टॉम का?
बहुत कुशलता से। वो एक एक करके अभियोजन पक्ष के गवाहों की बातों को काटते हैं। वो साबित करते हैं कि मायला ईविल, जो आरोप लगाने वाली लड़की है, उसके चेहरे पर चोटें दाहिनी तरफ हैं,
जिसका मतलब है कि मारने वाला बाएं हाथ का रहा होगा।
एग्जैक्टली। फिर वो बॉब ईविल, मायला के पिता, से कोर्ट में कुछ लिखवाते हैं, जिससे ये साबित हो जाता है कि वो बाएं हाथ से लिखता है, मतलब लेफ्ट हैंडेड है।
और टॉम रॉबिन्स?
एटिकस दिखाते हैं कि टॉम रॉबिन्सन का बाया हाथ बचपन में एक कॉटन जिन मशीन में आकर पूरी तरह बेकार हो गया था। वो उस हाथ का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता।
तो फिजिकली ये नामुमकिन था कि टॉम ने उसे मारा हो।
बिल्कुल, सबूत एकदम साफ था।
एटिकस सिर्फ सबूतों पर ही नहीं रुकते शायद।
नहीं, वो मायला की एक बहुत ही दयनीय तस्वीर भी पेश करते हैं। एक अकेली अशिक्षित गरीब लड़की
जिसका बाप शायद हिंसक है।
और एटिकस ये इशारा करते हैं कि शायद मायला ने ही टॉम रॉबिन्सन पर डोरे डालने की कोशिश की थी, जो उस समाज में एक बहुत बड़ा टैबू था।
एक श्वेत महिला का एक अश्वेत पुरुष के प्रति आकर्षण दिखाना।
हाँ, और जब उसके पिता बॉब इवेल ने ये देखा तो उसने गुस्से में मायला को पीटा और फिर सारा इल्जाम टॉम पर डाल दिया ताकि अपनी इज्जत बचा सके।
ये तो बहुत ही विस्फोटक बात थी उस कोर्ट रूम में कहने के लिए।
जाहिर है, अपने अंतिम भाषण में एटिकस जूरी की अंतरात्मा को जगाने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि वे अपने पूर्वाग्रहों से ऊपर उठें।
वो कहते हैं कि अदालत ही वो एक जगह है जहां सिद्धांत रूप में सब बराबर माने जाते हैं।
जी, वो न्याय के आदर्श की दुहाई देते हैं।
लेकिन नतीजा क्या होता है?
लेकिन नतीजा वही होता है जिसका डर था। सिद्धांत अपनी जगह, यथार्थ अपनी जगह।
जूरी टॉम को दोषी पाती है।
हाँ, पूरी तरह से श्वेत जूरी बिना ज्यादा देर लगाए टॉम रॉबिन्सन को दोषी करार देती है।
सारे सबूतों के बावजूद
ये फैसला जैसे एक हथौड़ा है, खासकर जेम के लिए।
हाँ, उसका न्याय पर से विश्वास उठ जाता होगा।
बिल्कुल, उसका आदर्शवाद टूट जाता है। ये दुनिया के अन्याय से उसका पहला और बहुत क्रूर सामना था।
लेकिन इस हार में भी कुछ सम्मानजनक होता है ना?
हाँ, वो बहुत मार्मिक है। अगली सुबह जब फिंच परिवार उठता है तो वो देखते हैं कि उनके घर के पिछवाड़े के बरामदे पर ढेर सारा खाना रखा है।
खाना कहाँ से आया?
मेकोम के अश्वेत समुदाय ने भेजा था, एटिकस के प्रति अपना सम्मान और आभार जताने के लिए।
वाह।
और जब एटिकस कोर्टरूम से बाहर निकलते हैं तो बैल्कनी में बैठे सभी अश्वेत लोग उनके सम्मान में चुपचाप खड़े हो जाते हैं। रेवरेंड साइक्स स्काउट से कहते हैं, मिस जीन लुइस, स्टैंड अप, योर फादर्स पासिंग।
ये मौन श्रद्धांजलि तो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरी है।
बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि एटिकस भले ही केस हार गए, लेकिन उन्होंने जो नैतिक लड़ाई लड़ी उसका सम्मान वो लोग करते हैं।
पर यह फैसला उस दौर की कड़वी सच्चाई तो दिखाता ही है, नस्ली अन्याय कितना गहरा था।
हाँ, टॉम रॉबिन्सन एक और मॉकिंगबर्ड बन जाता है।
मॉकिंगबर्ड? वो चिड़िया?
हाँ, एटिकस ने बच्चों को पहले समझाया था कि मॉकिंगबर्ड को मारना पाप है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मधुर गीत गाते हैं, हमारा मनोरंजन करते हैं, किसी का नुकसान नहीं करते।
तो टॉम भी एक मॉकिंगबर्ड था, निर्दोष।
बिल्कुल, एक निर्दोष प्राणी जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो कमजोर था और समाज पूर्वाग्रहों से अंधा था।
कहानी यहीं खत्म नहीं होती टॉम की?
नहीं, बाद में खबर आती है कि टॉम ने जेल से भागने की कोशिश की
और
उसे गोली मार दी गई। गार्ड्स ने 17 गोलियां मारी उसे।
17 गोलियां भागने की कोशिश में? ये
दिखाता है कि उस सिस्टम में उसके लिए न्याय की कोई उम्मीद, बचने का कोई रास्ता बचा ही नहीं था। शायद उसने उम्मीद ही छोड़ दी थी।
उधर बॉबी विल का क्या होता है, जिसे एटिकस ने झूठा साबित किया था?
हाँ, बॉबी विल, वो कोर्ट में हुए अपने अपमान से बहुत गुस्से में है, बदला लेना चाहता है।
किससे?
एटिकस से।
सबसे?
सबसे। वो एटिकस के चेहरे पर सरेआम थूकता है, जज टेलर के घर में रात को घुसने की कोशिश करता है।
अच्छा।
और टॉम रॉबिन्सन की विधवा हेलेन जब काम पर जाती है तो उसे रास्ते में परेशान करता है।
मतलब वो अपनी भड़ास निकाल रहा है।
हाँ, और कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, हैलोवीन की रात।
हैलोवीन पर क्या होता है?
स्काउट और जेम स्कूल के एक हैलोवीन पेजेंट से अंधेरे में पैदल घर लौट रहे होते हैं। स्काउट ने एक बड़ा सा अजीब सा हेम कॉस्ट्यूम पहना हुआ है।
और तभी बॉबी विल उन पर हमला कर देता है।
जी, अंधेरा है, हाथापाई होती है, जेम चिल्लाता है, स्काउट अपने कॉस्ट्यूम की वजह से ठीक से देख नहीं पाती, हिल नहीं पाती, जेम का हाथ बुरी तरह टूट जाता है।
बच्चे अकेले हैं।
तभी अचानक कोई और वहां आता है और वो बच्चों को बॉब ईविल से बचा लेता है।
कौन?
अंधेरे में पता नहीं चलता। वो अजनबी घायल जेम को उठाकर फिंच के घर ले जाता है।
और जब रोशनी में देखते हैं तो वो कौन निकलता है?
बू रैडली।
बू रैडली?
हाँ, वही रहस्यमयी पड़ोसी जिसे बच्चों ने कभी देखा नहीं था, लेकिन जो शायद हमेशा उन पर नजर रखता था। वो पेड़ के कोटर में उनके लिए तोहफे छोड़ता था ना।
हाँ, च्विंगम, सिक्के, साबुन की मूर्तियां। तो बू ने बच्चों को बचाया।
जी, शेरिफ हेक टेक भी वहां पहुंचते हैं। उन्हें घटनास्थल पर पेड़ के नीचे बॉब ईविल मरावा मिलता है।
मरावा? कैसे?
उसके सीने में एक रसोई का चाकू धंसा हुआ है।
तो बू रैडली ने उसे मारा बच्चों को बचाने के लिए।
एटिकस को पहले लगता है कि शायद जेम ने हाथापाई में, आत्मरक्षा में, ईविल को मारा है। वो कहते हैं कि जेम को कानून का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन शेरिफ कुछ और सोचते हैं।
हाँ, शेरिफ हेक्टेट सच्चाई समझ जाते हैं। वो जानते हैं कि ये बू रैडली था जिसने बच्चों की जान बचाई।
तो वो बू को हीरो घोषित करते हैं।
नहीं, यहीं पर शेरिफ एक बहुत बड़ा और समझदारी का फैसला लेते हैं। वो जानते हैं कि बू रैडली कितना एकांत प्रिय, शर्मीला इंसान है।
हाँ, वो दुनिया से छुपा रहता है।
तो उसे इस घटना के हीरो के तौर पर सबके सामने लाना, मीडिया, कोर्ट कचहरी, ये सब उसके लिए बहुत भयानक होगा।
वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा शायद।
बिल्कुल, इसलिए शेरिफ फैसला करते हैं कि आधिकारिक रिपोर्ट ये बनेगी कि बॉब ईविल नशे में था, अंधेरे में दौड़ा और अपने ही चाकू पर गिरकर मर गया।
वो सच को छुपा लेते हैं, बू को बचाने के लिए।
हाँ, वो एटिकस से कहते हैं, मिस्टर फिंच, इस शर्मीले आदमी को सबके सामने लाना, ये तो एक मॉकिंग बर्ड को मारने जैसा होगा।
फिर से मॉकिंग बर्ड।
जी।
इस तरह वो बू रेडली की मासूमियत और उसके एकांत की रक्षा करते हैं, एक तरह का न्याय करते हैं।
उपन्यास का अंत कैसे होता है?
अंत बहुत मार्मिक है। स्काउट पहली बार बू रेडली से ठीक से मिलती है। वो बहुत चुपचाप डरा हुआ सा है। फिर स्काउट उसे उसके घर तक छोड़ने जाती है
और उसके पोर्च पर खड़ी होकर,
हाँ, बू रेडली के घर के पोर्च पर खड़ी होकर स्काउट जैसे पहली बार दुनिया को बू की नजरों से देखती है, अपने पड़ोस को, पिछले कुछ सालों की घटनाओं को।
उसे समझ आता है
कि बू हमेशा से उनका एक खामोश रक्षक रहा है, चुपचाप उन पर नजर रखने वाला। उसे एटिकस की वो बात याद आती है और समझ आती है।
कौन सी बात?
तुम किसी इंसान को तब तक नहीं समझ सकते जब तक तुम उसके नजरिए से चीजों को ना देखो, जब तक तुम उसकी खाल में घुसकर ना चलो फिरो।
सहानुभूति,
एम्पैथी।
बिल्कुल, ये स्काउट की मासूमियत से सहानुभूति तक की यात्रा का चरम है, उसकी समझ पूरी होती है।
इस पूरी कहानी में कितने सारे गहरे विषय हैं, अच्छाई बुराई का सह अस्तित्व।
हमिकॉम में अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी, दया भी है, क्रूरता भी, और अक्सर एक ही इंसान में दोनों दिखते हैं। नैतिक चुनाव आपको करना है।
और सबसे बड़ा थीम तो जाहिर है नस्लीय अन्याय और पूर्वाग्रह।
जी, ये उपन्यास दिखाता है कि कैसे नफरत और डर न सिर्फ कानून को बल्कि इंसानियत को भी अंधा बना सकते हैं, न्याय को विकृत कर सकते हैं।
फिर साहस का विषय है, शारीरिक साहस बनाम नैतिक साहस।
हाँ, एटिकस सिखाते हैं कि असली साहस बंदूक चलाने में नहीं बल्कि नैतिक दृढ़ता में है, सिद्धांतों के लिए खड़े होने में, भले ही हार निश्चित लगे।
मासूमियत का खोना भी एक थीम है, बच्चों का बड़ा होना।
जी, स्काउट और खासकर जेम कहानी के अंत तक दुनिया की कठोर सच्चाइयों से रूबरू होते हैं, उनका बचपन पीछे छूट जाता है।
और सामाजिक असमानता भी सिर्फ नस्ल का मामला नहीं है।
नहीं, बिल्कुल, कहानी गरीबी, वर्ग भेद, सामाजिक पदानुक्रम के असर को भी दिखाती है। एविल परिवार बनाम कनिंघम परिवार, उनमें भी फर्क है।
इन विषयों को प्रतीकों के जरिए भी उभारा गया है, मॉकिंग बर्ड तो है ही।
हाँ, मॉकिंग बर्ड केंद्रीय प्रतीक है निर्दोषिता का, जिसे समाज की बुराई कुचल देती है। टॉम रॉबिन्सन और बू रेडली दोनों मानवीय मॉकिंग बर्ड हैं।
और वो पागल कुत्ता?
पागल कुत्ता टिम जॉनसन, वो शायद उस तर्कहीन नस्लीय उन्माद का प्रतीक है जिसका सामना एटिकस को करना पड़ता है।
बू रेडली का घर,
वो घर खुद में रहस्य, डर, समाज से अलगाव का प्रतीक है, लेकिन अंत में अप्रत्याशित अच्छाई का स्रोत भी बनता है।
हार्पर ली की लिखने की शैली भी बहुत खास है।
स्काउट का नजरिया, हाँ, ये डुअल पर्सपेक्टिव कमाल का है। कहानी सुना रही है एक वयस्क स्काउट जो अपने बचपन को याद कर रही है,
तो हमें एक बच्चे की नजर भी मिलती है और एक वयस्क की समझ भी।
बिल्कुल, बच्चे की सीधी कभी कभी मजेदार बातें और साथ में वयस्क स्काउट की गहरी सोच, इससे कहानी भारी भरकम या उपदेशात्मक नहीं लगती।
भाषा में भी एक खासियत है, दक्षिणी अमेरिका की महक है उसमें।
जी, गर्मजोशी है, हास्य है और एक नैतिक स्पष्टता है जो बहुत सहजता से आती है,
और इसीलिए शायद ये उपन्यास इतना असर करता है, भावनाएं जगाता है।
हाँ, आप फिंच परिवार से जुड़ जाते हैं, एटिकस के लिए सम्मान महसूस करते हैं,
टॉम रॉबिन्सन की कहानी पर गुस्सा और दुख आता है,
और बू रेडली के लिए एक अजीब सी करुणा महसूस होती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इंसान के बारे में, समाज के बारे में।
ये बड़ी बड़ी बातें, न्याय, पूर्वाग्रह, साहस, इनको एक बच्चे की कहानी के जरिए बहुत पर्सनल बना देती हैं।
जी, बिल्कुल।
तो अंत में ये कहानी हमें क्या सिखाती है, क्या है इसका सार?
मेरे ख्याल से सबसे बड़ी सीख सहानुभूति की है, दूसरों के नजरिए को समझने की कोशिश करना,
और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का साहस, कमजोरों की रक्षा करना।
हाँ, भले ही समाज आपके विरुद्ध हो, अपने सिद्धांतों पर टिके रहना।
और शायद इसीलिए ये आज भी इतनी प्रासंगिक है, है ना?
बिल्कुल, क्योंकि ये सवाल, न्याय, मानवीय गरिमा, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, ये तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे। ये हमें याद दिलाती है कि दुनिया को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सबकी है, अपने छोटे छोटे दायरे में ही सही।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।